आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 106वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में स्वभाववश की गई अनजानी भूल के प्रति प्रायश्चित पर प्रकाश डाला गया है। आगे लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में पैतृक बड़ा बंगला था, जिसमें रहने वाले केवल दो प्राणी, पति सुभाष एवं पत्नी सुकन्या, कोई संतान नहीं थी। पास ही फार्म हाउस, उससे सटी एक बड़ी बिल्डिंग में चिकन की कढ़ाई का कारखाना खोल रखा था। जीवन बहुत नियमित चल रहा था। एक्सपोर्ट का काम भी जोर शोर से चल रहा था। अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन सुख भोगने वाला मात्र दो पति पत्नी। दान पुण्य में भी विश्वास रखते थे दोनों। मुक्त हस्त अन्न वस्त्र धन आदि का दान निमित्त करते ही रहते थे। दिसंबर की भीषण ठंड पड़ रही थी। रात 10 बजे बाद दोनों पति पत्नी अपनी मर्सिडीज कार में कंबल भरकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फुटपाथ पर जो भी व्यक्ति सोता मिलता, उसकी ज़रूरत के मुताबिक गाड़ी रोककर कंबल उड़ाते और आगे बढ़ जाते। सारी कंबल समाप्त कर बंगले पर लौटने लगे। बंगले से लगभग 100 मीटर दूर एक असहाय सा व्यक्ति सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे छोटा सा बैठा मिला, दिखलाई पड़ा। सुकन्या ने पति को गाड़ी किनारे लगाने को कहा। प्रत्युत्तर में पति ने कहा कि अब तो एक भी कंबल नहीं बचा है, फिर गाड़ी रोकने का क्या मतलब है। सुकन्या ने कहा कि गाड़ी की पिछली सीट पर मेरा शॉल तो है, वही इसको उड़ा देंगे। पति सुभाष ने जब बताया, अरे वह तो बहुत ही महंगा पश्मीना शॉल है, लेकिन सुकन्या ने बिना कोई संवाद के गाड़ी से उतर अपना शॉल जो गाड़ी में रखा था उस व्यक्ति को उड़ा वापस गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी गंतव्य को चल दी। वह व्यक्ति कृतज्ञता से गाड़ी को जाती देखता रहा। 3 दिन बाद उस दंपत्ति जब बाजार से दिन में लौट रहे थे, तो वह व्यक्ति उसी स्थान पर एक कमीज पहने बैठा था, शॉल गायब था। जिसे देख सुभाष पत्नी से बोला, उस दिन भावुक होकर आपने अपना कीमती शॉल भेंट कर दिया था, लेकिन इनको उसकी कोई कीमत नहीं होती। किसी को 100-200 रुपये में बेच दारू में पैसे उड़ा दिए होंगे। सुकन्या ने कहा, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं चलकर जानकारी करती हूँ। सुकन्या गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाकर बोली, भैया वह शाल जो मैं आपको देकर गई थी कहाँ है। सुकन्या को पहचानते हुए उस व्यक्ति ने कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए हाथ के इशारे किया, तो सुकन्या ने पाया कि एक औरत खाट पर उस साल में लिपटी लेटी हुई थी। उस व्यक्ति ने बताया कि वह उसकी पत्नी है। शरीर पर पूरे कपड़े न होने से आते जाते लोग गलत निगाह से देखते थे, इसलिए वह साल उसे दे दिया है। मेरा क्या है, मुझे तो ठंड सहन करने की आदत है। व्यक्ति की बात सुन सुभाष को अपनी संकुचित सोच पर शर्म महसूस हो रही थी, अतः उस व्यक्ति को अपने बंगले पर आने का आग्रह किया कि वह सामने वाली बंगले में हम रहते हैं, कोई ऊनी कपड़ा आपको अभी देते हैं, आप अभी वहाँ पहुँचो। उस व्यक्ति सुभाष के सुझाव पर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा गाड़ी के पीछे पीछे बंगले पर जो करीब 100 मीटर दूर ही था पहुँच गया। इत्तफाकन सुभाष घर के अंदर पहुँच अन्य कारों में इतना व्यस्त हुआ कि वह यह भूल गया कि बाहर कोई उसका इंतजार करता होगा। वह निर्धन भिखारी कंबल की कल्पना करते करते बंगले के बाहर ही सुबह तक बैठा बैठा ठंड के कारण अकड़ गया। अन्य दिन तो वह भगवान के भरोसे ठंड से सामना करता था, लेकिन आज वह भगवान को भूल कंबल को पाने की आस में स्वाभाविक रूप से अधिक ठंड महसूस कर अकड़ गया। प्रातः सुभाष नित्य की तरह जब बंगले से बाहर अपनी कंपनी जाने को निकला तो बंगले के बाहर जकायक भीड़ देख कौतूहल वर्ष। जब पहुंचा तो वहां राजली वाला भिखारी प्रायः मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको देख रात्री को उसे दिया गया वायदा याद आते ही सुभाष हरकत में आ गया। तुरंत ही भिखारी के पास को नर्सिंग होम में भर्ती करा, उपचार चालू कराया और सौभाग्य से बचा लिया। उसी दिन प्रायश्चित स्वरूप अपने फार्म हाउस को अस्थायी रूप से नए शेल्टर हाउस में सुव्यवस्थित कर अपने एरिया के सभी वो लोग जो फुटपाथ पर सोते देखे अपने फार्म हाउस में रात्रि शरण की यासनापूर्वक व्यवस्था की। गर्म कपड़ों के अलावा भोजन भी जरूरतमंदों के लिए भिजवाया और धन का सदुपयोग कर शांति का अनुभव किया। जब हमें किसी कर्म से कड़वे अनुभव हों तब हमें शीघ्र क्षमा भाव अपना कर भावनात्मक बोझ को दूर कर लेना चाहिए। सुभाष ने वही किया। दुखी जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में उम्मीद के उजाले आप भी भर सकते हैं। आप भी इसी तरह चमत्कार करने वाली बन सकती हैं। बंधु, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट दें, फॉलो करें और धन्यवाद।